वेधवला पुस्तक 11वी लेक्चर नंबर 1 ॐ नमः सिद्धेभ्यः
ॐ नमः सिद्धेभ्यः
ॐ नमः सिद्धेभ्यः
ॐ शुद्धात्मने नमः
नमो अरिहन्ताणम्
नमो सिद्धाणम्
नमो आयर्याणम्
नमो वज्रायाणम्
नमो लोये सौवसाहूणम्
वेदग वेदग वेदगम्
अवेदगम् वेदग्रन्थसंसिद्धम्
सिद्धम् प्रणमीय शिरसा वोच्छं वेदगमहारी
आरमं। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुण तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। ग्यारहवीं पुस्तक वही जो वेदक नाम का अर्थाधिकार अपना शुरू है, वहां तो हमने स्थिति की उदीरणा देखी थी। अब यहाँ पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ से बात शुरू होती है। सूत्र पढ़ेंगे पहले। को व के अनुभागेति अनुभाग उदीरणा कायोगा। को व के अनुभागेति, हाँ उसके नीचे, को व के अनुभागे, यह वेदक महाधिकार से संबंधित दूसरी गाथा का दूसरा अवयवभूत अर्थ पद है। वो पुस्तक लाई ना अभी पहले वाली। ये सूत्र का जो हिंदी है उसको पढ़ेंगे अभी हम। ऊपर हमने सूत्र पढ़ा, वही मैं पढ़ने जा रही हूँ। अभी हमने जो सूत्र पढ़ा, कोव के अनुभागे की अनुभाग उदीरणा कायोगा। कोव के अनुभागे, इस सूत्र वचन के अनुसार अनुभाग उदीरणा का कथन करना चाहिए, यानी अभी यहाँ अनुभाग उदीरणा का प्रकरण चलेगा। अनुभाग घटना और उस रूप उदय होना, उसको हम अनुभाग उदीरणा कहेंगे। तो को व के अनुभागे, ये जो बताया है, ये जो वेदक महाधिकार के संबंध से दूसरी गाथा का दूसरा अवयव बताया उन्होंने, तो यहाँ ये जो गाथा थी पहली गाथा ऐसी थी, कदी आवलियम पवेसे ही, उदयावली में कौन प्रवेशते हैं, कदी च पविस्संति कस्य आवलियम, और खेत भव काल पोगल ठिदि विवागो दय खयोदु। ये मैं पुस्तक 10वीं में से पढ़ रही हूँ। उसमें दो गाथाएं आई थी जहां वेदक अर्थाधिकार शुरू हुआ था, तो उसकी तो बात हमें देख ली। अब आगे जो लिखा है, को कदमाए ठिदिये पवेसगो, यानी वहां कौन किस स्थिति में प्रवेश कराने वाला है, वो उसकी बात वहां थी। ये पहला अवयव हुआ, पहला पार्ट हुआ उसका। दूसरी गाथा के पहली लाइन जो है प्रथम पद, उसका पहला हाफ भाग। वहां लिखा है आगे कि को व के अनुभागे, कौन जीव किस अनुभाग में कर्मों का प्रवेश कराने वाला है, अनुभाग का प्रवेश कराने वाला है ना, वो अनुभाग घटकर जो उदय में आता है उसको किस अनुभाग में प्रवेश कराने वाला है, उसकी बात, अब उस अवयव की बात यहाँ चलेगी। अभी उसका हम स्पष्टीकरण पढ़ते हैं नीचे लास्ट लाइन पहली पहले पृष्ठ पर। को व के अनुभागे, यह वेदक महाधिकार से संबंधित दूसरी गाथा का दूसरा अवयवभूत अर्थ पद है। अर्थ पद है जिसमें से जो कोई वाक्य है उसको कहेगी, जो कोई चरण है उसका, उसका अवलंबन कर इस समय अनुभाग उदीर्णा का व्याख्यान करना चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। चूनी सूत्रकार ने तो इतना ही बताया कि यहाँ अनुभाग उदीर्णा का कथन करना चाहिए। अब अनुभाग उदीर्णा के स्वरूप विशेष का ज्ञान कराने के लिए, स्वरूप विशेष ने अधिक विस्तार पूर्वक उसका स्वरूप समझने के लिए, ज्ञान कराने के लिए अर्थ पद की प्ररूपणा करते हुए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। ये जो अर्थ पद हमने देखा कौवकेय कौवकेय अनुभागे ऐसा जो लिखा है, ये अर्थ पद हुआ। अभी उसका स्पष्टीकरण कहेंगे। तथ्य अर्थ पदम, उस विषय में यह अर्थ पद है, वहां अनुभाग उदीर्णा के अवसर पर सर्वप्रथम अर्थ पद का कथन करते हैं। यानी जहां जो कोई वहां स्टेटमेंट होगा, कोई जो कोई रूल होगा, नियम होगा, वो उसकी बात यहां बताएंगे। चूर्णी सूत्र ये तथ्य अट्ठपद में चूर्णी सूत्र हुआ। हाँ, उस विषय में यह अर्थपद है, ये चूर्णी सूत्रकार ने लिखा है दो पेज पर। वहां अनुभाग उदीर्णा के अवसर पर सर्वप्रथम अर्थपद का कथन करते हैं। शंका, अर्थपद किसे कहते हैं? उसका समाधान, जिससे श्रोताओं को प्रकृत अर्थ के विषय में सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है, अर्थ के वाचक उस पद को अर्थपद कहते हैं। हम जो कोई शब्द, दो चार शब्द बोलते हैं और सुनने वाले को वो अर्थ भाषित होता है तो उसको कहेंगे अर्थपद। कोई भी है, जैसे हमने किसी को बता दिया कि आज कौन वार है, बता दिया आज बुधवार है, तो आपको ख्याल आया हम क्या बता रहे हैं, उन शब्दों से कुछ वाक्य रचना हुई और उससे आपको अर्थ भाषित हुआ। हमने कहा कि ये जो पेन है वो लाल है, तो ये जो वाचक शब्द है उससे उसके अर्थ का ज्ञान होता है, उसको यहाँ अर्थपद कहते हैं। हमने ज्ञान मार्गणा में देखे थे पद तीन प्रकार के होते हैं, ये अर्थपद, फिर नहीं वो आप नए कह रहे हैं अर्थ नए, ज्ञान नए और शब्द नए, वो अलग बात है। यहाँ हाँ बोलो, आप वही बता रहे हैं। एक है अर्थपद, एक है प्रमाण पद और एक है मध्यम पद। अर्थपद यानी कोई भी वाक्य, राम ने आम खाया, हो गया अर्थपद। प्रमाण पद यानी जो ये दोहे होते हैं, आर्या होती है, कोई छंद होते हैं, विशिष्ट संख्या में वही नंबर रिपीट होता है, उसको कहेंगे प्रमाण पद। यूजुअली वो जो आर्या छंद है उसमें जो 32 है ना, नमः समय साराय, आठ आठ का है, स्वानुभूत्या चकासते, फिर आठ आठ श्लोक, 32 का एक श्लोक होता है, उसको प्रमाण पद कहेंगे। और मध्यम पद याद है, बोलो मध्यम पद में कितने अक्षर है, जिसमें जिनवानी का 1634 करोड़, 1683,00,000, 7,888, इतने
प्रमाण पद में शब्द,
अपुनरुक्त अक्षरों का एक पद होता है, उसको हम कहेंगे मध्यम पद। और उस मध्यम पद में शास्त्रों की रचना है, अपने जो 11 अंग है हमने कि किसमें कितने पद होते हैं, तो पहले आचार अंग हम कहते हैं उसमें तो 18,000 पद है, दूसरे में 36,000 है, ऐसे ऐसे उसकी बात यहाँ नहीं। यहाँ तो अर्थ पद यानी ये जो वाक्य है जिससे हमें कोई अर्थ भाषित होता है उसको अर्थ कहते, अर्थ पद कहते हैं। तम जहाँ यथा अणुभागा पयोगेन ओकड्डीयूण उदय दिज्जंती सा उदीर्णा, प्रयोगवश अनुभाग अपकर्षित कर उदय में दिए जाते हैं वह उदीर्णा है। प्रयोग वश यानी जीव के परिणाम के वश, प्रयोग करता है यानी कुछ ऊपर से नीचे लाता है, ऐसी कोई बात नहीं हुआ,
कार्य से
यानी विशिष्ट कारण वश उसके परिणाम के। यहाँ कारण यानी परिणाम ही जीव का ही कर्मों के साथ निमित्त बनता है। अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, यहाँ इस पुस्तक में अभी अनुभाग उदीर्णा की बात चलेगी। अब तक हम स्थिति उदीर्णा देख के आए हैं, तो यहाँ इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, मूल और उत्तर प्रकृतियों के अनंत भेदों को प्राप्त। प्रकृतियों के अनंत भेद नहीं है, मूल और उत्तर प्रकृतियों में अनंत भेदों को प्राप्त ऐसे क्या है, तो स्पर्धक है यानी अनंत स्पर्धक है। वर्गणा और अविभाग प्रतिच्छेद स्वरूप अनुभाग प्रयोगवश अर्थात परिणाम विशेष के कारण, लिखा नहीं यहाँ पर प्रयोगवश का अर्थ क्या किया, जीव के परिणाम के कारण, परिणाम विशेष के कारण यानी विवक्षित परिणाम के कारण, अपकर्षित कर यानी घटाकर, अनंत गुणहीन रूप से जो उदय में दिए जाते हैं, केवल घटाना नहीं अपकर्षित तो किए, अनंत गुणाहीन होना यानी अनंत वे भाग रूप हो जाना, उदय में दिए जाते हैं, ये भी एक एक इसका शब्द महत्व का है, उसकी उदीर्णा संज्ञा है। यहाँ अनुभाग उदीर्णा की बात चल रही है। अभी तक हमने क्या देखे, भविष्य काल में कुछ काल बाद उदय में आने योग्य निषेकों में से कुछ परमाणु उदयावली में आकर उदय में आ जाते हैं, उदय में प्राप्त होते हैं, उसको उदीर्णा कहा था। अब यहाँ क्या है, ये अनुभाग बताने वाले क्या है, वर्ग वर्गणा स्पर्धक, अविभाग प्रतिच्छेद में तो अनुभाग गिना जाता है, विशिष्ट अनुभाग प्रतिच्छेदो युक्त परमाणु को यहाँ वर्ग कहा, जहाँ समान समान अनुभाग है उन सभी परमाणुओं के समूह को, ग्रुप को हम वर्गणा कहेंगे, और ऐसे अनंत वर्गणाओं का एक स्पर्धक होता है, और ऐसे अनंत स्पर्धक सत्ता में पाए जाते हैं। तो ये जो
यहाँ पे जो अनुभाग हीन रूप से दिया जाता है, तो परिणाम वश जब अनुभाग बढ़ के भी होते ही मैं आना, उसको भी उदीर्णा कहेंगे,
उसको कैसे कहेंगे बढ़कर, अपकर्षित होना यही शब्द डाला नहीं आप,
नहीं वहाँ पे भी अनुभाग बढ़ के जो उदय में आता है वहाँ पे
उसकी बात नहीं है। अभी अभी क्या चल रहा है, परिणाम वश के कारण अपकर्षित कर अनंत गुणहीन रूप से उसको उदीना, उदय में आना ये महत्व की बात है। अब उसको जो अनुभाग बढ़ेगा तो उसको हम उत्कर्षण कहेंगे,
नहीं जो परिणाम के वश जो जुड़ जाता है संक्लेश परिणाम में, वहाँ पे भी उदय तो होगा,
उसको अपकर्षण कहेंगे कि उत्कर्षण कहेंगे, वो उत्कर्षण हुआ, अनुभाग का बढ़ना उत्कर्षण कहलाएगा, अनुभाग का घटना। अभी अनुभाग के साथ आप स्थिति को मत सोचो, अनुभाग वर्तमान में कि वर्तमान उदय रूप निषेक में ही जघन्य अनुभाग से उत्कृष्ट अनुभाग तक अलग अलग अनेक परमाणु पड़े रहे, अब वो किस रूप में उदय में आते हैं, अनंत गुणाहीन होकर उदय में आएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उदीर्ण हुई कहेंगे। हाँ अलग अलग पावर वाले है, हाँ यानी वो दूसरे वो आवली के ऊपर है, उसको तो स्थिति में कंसीडर करने, अभी उसकी बात ही नहीं करना है, अभी मात्र स्पर्धकों का अनुभाग घटना और घटकर उदय में आना, उसको यहाँ उदीर्णा कहिए,
नहीं बढ़ना नहीं ना, आपने कहा बढ़ के भी उदय में आएगा उसको उदीर्णा, क्योंकि परिणाम वर्ष जो मिथ्या दृष्टि जीव है संक्लेश परिणाम में जुड़ जाता है,
उसको हम अपकर्षण कहेंगे क्या,
हाँ वो अनुभाग बढ़ के उदय, हाँ
उसको उदीर्णा कहना हो रहा है, यहाँ क्या यहाँ जो
या
वो उसको हम अपकर्षण नहीं कहेंगे,
उत्कर्षण
उसका उदय नहीं होता उसकी बात नहीं, यहाँ जो विषय चल रहे पहले उसको समझेंगे,
अपकर्षण
यहाँ क्या कहते, देखो मूल और उत्तर प्रकृतियों के अनंत भेदों को प्राप्त स्पर्धक वर्गणा विभाग प्रतिच्छेद स्वरूप अनुभाग प्रयोगवश अर्थात परिणाम विशेष के कारण। ये प्रयोग शब्द क्यों डाला? विशिष्ट परिणाम के कारण उसका अनुभव घटना और उदय में आना, ये बात चल रही है। अपकर्षित कर अनंत गुणहीन रूप से जो उदय में दिए जाते हैं उसकी उदीर्णा संज्ञा है, क्योंकि अपक्व पाचन को उदीर्णा कहते हैं, ऐसा आगम वचन है। इसलिए अनुभाग उदीर्णा अपकर्षण की अविनाभावी है। क्या लिखा? अविनाभावी नहीं, उसके बिना होगी नहीं, वो
नहीं सकती।
देखो हम अपने सारे प्रश्नों का उत्तर है यहाँ पर, थोड़ी थोड़ी हम
शांति रखें,
शांति रखें।
वो पहले
इसलिए अनुभाग उदीर्णा अपकर्षण की अविनाभावी है। यानी अनुभाग घटकर उदय में आने को ही यहाँ अनुभाग उदीर्णा कहेंगे। ऐसा समझकर यहाँ अपकर्षणा विषयक थोड़े से अर्थपद का प्ररूपण करते हुए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते। अब अपकर्षण संबंधी कुछ अर्थपद ने कुछ नियम बताएंगे। अपकर्षण में क्या क्या होता है, कौन से स्पर्धकों का अपकर्षण होगा नहीं होगा, उसकी बात यहाँ बताएंगे। तथ्य जम जिससे आदि फद्दयम तम न ओकडिज्जदि, वहां जो जिस कर्म प्रकृति का आदि स्पर्धक है उसका अपकर्षण नहीं होता। अभी आदि स्पर्धक का अर्थ ऐसा नहीं समझना कि वो पहले समय में उदय रूप हो, ऐसा मत समझना। आदि स्पर्धक यानी जघन्य स्पर्धक, यानी मिनिमम अनुभाग वाला स्पर्धक। उसका जघन्य कहे, प्रथम कहे, उसका अपकर्षण नहीं होता, क्योंकि उससे नीचे अनुभाग स्पर्धकों का होना असंभव है। क्या कितने यानी उसका आसान रीजनिंग बताया, उसके नीचे कहाँ जावे? अभी वही है, वो उसका पहला नंबर है। जैसे हम स्थिति में क्या देखा था, उदयावले वाले की उदीर्णा नहीं होती, उसके ऊपर के नीचे के नीचे आएंगे, उसमें से कुछ परमाणु। अब यहाँ अनुभाग की बात है। अब आंखों के सामने वो स्थिति वाली बात भूल जाओ। अब जो स्पर्धक रचना है, हम ऐसे गोल 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 देखते थे, तो उसमें नीचे का स्पर्धक वो मिनिमम अनुभाग वाला है, उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर, तभी नीचे के स्पर्धक में से तो उदीर्णा नहीं होगी, क्योंकि उससे नीचे स्पर्धक ही नहीं है, तो उससे नीचे अनुभाग स्पर्धकों का होना असंभव है। एवं अनंतानि फद्दयानि न उपिडज्जन्ति, इसी प्रकार अनंत स्पर्धक नहीं अपकर्षित होते। जघन्य से लेकर अनंत स्पर्धकों तक अपकर्षण नहीं होगा, यानी उसका अनुभाग घटकर नीचे के स्पर्धकों में नहीं आएंगे। यहाँ ये बात कहना चाहते हैं कि यहाँ स्पर्धक रचना में हम कह देखते हैं, जो जघन्य मिनिमम अनुभाग वाले जो यहाँ हमारे यहाँ ये हम ऐसा देखते हैं ना, ये एक एक स्पर्धक दिखा दे रहा। इस एक एक स्पर्धक में क्या है, अनंत अनंत वर्गना है। सबसे नीचे की वर्गना उसमें मिनिमम अनुभाग, उससे ऊपर की एक अधिक एक अधिक एक अधिक, अनंत वर्गनाओं का एक स्पर्धक हुआ। तो ये स्पर्धक अनंत स्पर्धक चले जाएंगे, उनका अनुभाग घटेगा नहीं, यानी उसकी उदीर्णा नहीं होगी, उसका अपकर्षण नहीं होगा। यानी यहां तक के अनंत स्पर्धकों का अपकर्षण नहीं होगा। तो यहाँ यही बात लिखी, इसी प्रकार अनंत स्पर्धक नहीं अपकर्षित होते, क्योंकि विवक्षित स्पर्धक से नीचे जघन्य अति स्थापना और जघन्य निक्षेप मात्र स्पर्धकों के बिना अपकर्षण होना संभव नहीं है। अभी निक्षेप और अतिस्थापना क्या होती है? जहां ऊपर से अभी यहाँ तो हम अनुभव की अपेक्षा बता रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आएंगे, जहाँ दिए जाएंगे उसको निक्षेप कहेंगे, यानी बीच वाले कितने ही छोड़कर लांघकर नीचे के इसमें दिए जाएंगे तो इसको निक्षेप कहेंगे, और ये बीच वाले जो छोड़े जाएंगे उसको अतिस्थापना कहेंगे। यानी मिनिमम अतिस्थापना और मिनिमम निक्षेप तो वहां होने चाहिए, उसके बिना तो उदीर्णा नहीं होगी, अपकर्षण नहीं होगा। तो ये कारण क्या बताया, विवक्षित, यानी हम क्या यहां से नीचे अपकर्षण होगा तो कहें नहीं, क्यों, नीचे अतिस्थापना और निक्षेप जितने निषेक नहीं है, यहां से होगा नहीं, क्योंकि अतिस्थापना और निक्षेप के उतने निषेक निषेक सॉरी इसके स्पर्धक नहीं नीचे, यहां से होगा नहीं होगा, क्योंकि इसके जो नीचे के स्पर्धक है वो अतिस्थापना प्लस निक्षेप इतने नहीं है, तो कहां से होगा, तो हम कहेंगे पहले में पहले यहां से होगा। तो यही बात कहे कि विवक्षित स्पर्धक से नीचे जघन्य अतिस्थापना और जघन्य निक्षेप मात्र स्पर्धकों के बिना अपकर्षण होना संभव नहीं है। हमें तो केवल इसका अर्थ समझ के आगे चलना है। मैं भी ख्याल में आती बाकी। अब केती यानी तो ये कितने होते हैं, यानी कितने नीचे के स्पर्धक छोड़कर वहां से उसकी उदीर्णा अपकर्षण होगा, तो केती यानी जत्ति को जहन्न को निखे वो जहन्नी जहन्निया चाहिए ना, जहन्ना इच्छावणा जहन्ना च इच्छावणा तत्ती गाणी। यहाँ नीचे क्या लिखा है, जहन्न इच्छावणा, जहन्ना चाहिए, जहन्ना इच्छावणा, ये उसके आगे उसको ये दिया है ना, इकार मराठी में हम वेलांटी कहते हैं उसको, वो नहीं चाहिए, जहन्ना चाहिए, मैं फिर सूत्र पढ़ती, केती यानी कितने हैं पूछ रहे, जत्ती को जहन्न को निखे वो जहन्ना च अइच्छावणा तत्ती गाणी, इसका अर्थ है वे कितने हैं, वे यानी अपकर्षण के अयोग्य स्पर्धक कितने हैं, यानी नीचे कितने स्पर्धकों को छोड़ना कि जिसमें से अपकर्षण नहीं होगा, तो कहते हैं जितना जघन्य निक्षेप है और जघन्य अतिस्थापना है उतने हैं, यानी जघन्य निक्षेप प्लस जघन्य अतिस्थापना को मिलाकर जितना हो उतने में से अपकर्षण नहीं होगा, उसका अर्थ बताते हैं आगे। अनंत स्पर्धक नहीं अपकर्षित होते, यह पूर्व सूत्र में कहा है, वे कितने हैं ऐसा पूछने पर वे जघन्य अतिस्थापना और जघन्य निक्षेप प्रमाण है, नहीं अपकर्षित होने वाले हो, इस प्रकार इस सूत्र द्वारा उनका प्रमाण निर्देश किया है। इस प्रकार इस सूत्र द्वारा जघन्य अतिस्थापना और जघन्य निक्षेप प्रमाण स्पर्धकों का अपकर्षण नहीं होता ऐसा कथन करके अब इनसे ऊपर के स्पर्धकों में अपकर्षण का प्रतिषेध नहीं है, प्रतिषेध यानी निषेध नहीं है, इसका कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, आदि दो पहुड़ी एत्यमित्तानी फद्दयानी अइच्छिदूण तम फद्दयम ओकडिज्जदि, आदि स्पर्धक से लेकर इतने स्पर्धकों को उल्लंघन कर जो स्पर्धक है उसका आकर्षण होता है। हमने देखा था नीचे के निक्षेप और अतिस्थापना छोड़कर ये वाला जो यहाँ स्पर्धक है उसमें से अपकर्षण होगा, आदि स्पर्धक यानी नीचे वाला जघन्य, ऊपर हमने देखा था ना जघन्य स्पर्धक को, मिनिमम वाले स्पर्धक को हमने आदि स्पर्धक कहा, वहां से लेकर जघन्य निक्षेप और जघन्य अतिस्थापना प्रमाण स्पर्धकों को छोड़कर उसके ऊपर जो पर्दक है, पहले में पहले वहां से अपकर्षण पॉसिबल उदीर्णा होगी, उसका अपकर्षण होता है। सुगमम, यह सूत्र सुगम है। तेन परम परिसिद्धम, उससे आगे प्रतिषेध नहीं है, यानी उसके आगे के सभी स्पर्धकों में से उदीर्णा होगी। जैसे हमने स्थिति में देखा था, उदयावली प्रमाण निषेध छोड़कर ऊपर के सभी में से उदीर्णा होगी। एदेन अट्ठपदेन अनुभाग उदीर्णा दुविहा, मूल पयड़ी अनुभाग उदीर्णा च, उत्तर पयड़ी अनुभाग उदीर्णा च। इस अर्थ पद के अनुसार अनुभाग उदीर्णा दो प्रकार की है, मूल प्रकृति अनुभाग उदीर्णा और उत्तर प्रकृति अनुभाग उदीर्णा। जैसे मोहनीय इन जनरल बात करेंगे, फिर एक एक प्रकृति की अलग बात करेंगे। पूर्व में कथित इस अर्थ पद के द्वारा जो अनुभाग उदीर्णा अधिकृत की गई है, वह मूल और उत्तर प्रकृति विषयक अनुभाग उदीर्णा के भेद से दो प्रकार की है। उसमें सर्वप्रथम मूल प्रकृति अनुभाग उदीर्णा का व्याख्यान करना चाहिए, इसका कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। इत्थ मूल पयड़ी अनुभाग उदीर्णा भाणी हुआ के भणी हुआ, पीछे कुछ सूत्र है क्या? पेज नंबर 367। एदेन अर्थपदेन, ये कहाँ है सब? नहीं है ना, तीन सौ बहत्तर पर अच्छा अच्छा वहाँ से भाग 11 यहाँ पर है। हाँ हाँ, भाणी हुआ ही लिखा है, भाणी हुआ, ठीक है। इतना मूल पयड़ी अनुभाग उदीर्णा भाणी हुआ, यहाँ मूल प्रकृति अनुभाग उदीर्णा का व्याख्यान करना चाहिए। संक्षेप रुचि वाले जीवों का अनुग्रह करने के लिए यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है, इसलिए इसका विस्तार से कथन करने के लिए क्या कहते हैं, ये इतना मात्र बता दिया, संक्षेप रुचि वाले इतने में से समझ जाते हैं, और फिर विस्तार से समझाने के लिए, विस्तार से कथन करने के लिए उच्चारणाचार्य के उपदेश के बल से उसका प्रकाशन करते हैं। यथा मूल प्रकृति अनुभाग उदीर्णा के विषय में ये 23 संयोग द्वार है। संज्ञा से लेकर अल्प बहुत्व तक तथा भुजगार पदनिक्षेप और वृद्धि उदीर्णा, हमेशा 24 होते हैं ना, मूल में वो सन्निकर्ष वाला नहीं होता, इस प्रकृति के साथ दूसरे प्रकृति की क्या पोजीशन होगी, बाकी 23 हो गए इसमें। उनमें से संज्ञा दो प्रकार की है, घाती संज्ञा और स्थान संज्ञा। घाती संज्ञा दो प्रकार की है, जघन्य और उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मौनी कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा सर्वघाती है। अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा सर्वघाती है और देशघाती है। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए, शेष गतियों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण सर्वघाती है। ओ यानी मनुष्य त्रिक में ही उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण
देश का थी नहीं
सर्वघाती होती है, अन्य में उत्कृष्ट भी और अनुत्कृष्ट भी
सर्वघाती
होती है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। अब जगन्य का प्रकरण है, अब इस संबंधी विशेष खुलासा तो आगे इसका प्रकरण चलेगा तब होगा। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मौनी कर्म की जघन्य अनुभाग उदीर्णा देश घाती है, अजघन्य अनुभाग उदीर्णा देश घाती है और सर्वघाती है। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए, शेष गतियों में जघन्य और अजघन्य अनुभाग उदीर्णा सर्वघाती है, यानी अन्य गतियों में सभी उदीर्णा सर्वघाती बताई, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट भी और जघन्य अजघन्य भी। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। इस संज्ञा दो प्रकार की बताई ना, घाती संज्ञा हो गई। हाँ अभी नंबर वन ही चल रहा है, संज्ञा वाला ही चल रहा है। यानी ये मूल प्रकृति अनुभाग उदीर्णा में नंबर वन चल रहा है संज्ञा से। उसके दो भेद किए, घाती संज्ञा और स्थान संज्ञा। उसमें से ये स्थान संज्ञा है, यानी एक में से एक हुआ, अभी एक में से ये दो चल रहा है स्थान संज्ञा। तो स्थान संज्ञा दो प्रकार की है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है, निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोनीय कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा चतुस्थानीय है। मंजू बेने चतुस्थानीय किसको कहना? हाँ हाँ हाँ
वाले।
यानी कौन से चार नाम है मोनीय के?
लता,
दारू,
शैल और अस्थि।
अस्थि और शैल,
अस्थि और शैल।
जब शैल वालों की उदीर्णा चल रही तो उसको चतुस्थानीय कहें। ये जरूरी नहीं कि लता से लेकर वहां, ये हमने पहले बहुत बात पढ़ी थी अनुभाग विभक्ति के प्रकरण में। तो क्या कहते हैं, उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा चतुस्थानीय है, अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा चतुस्थानीय है, त्रिस्थानीय है, द्विस्थानीय है और एक स्थानीय है। क्योंकि शैल वाले में भी अनंत स्पर्धक है। सर्वोत्कृष्ट अनुभाग का वो घटना जो है वहां से लेकर नीचे तक, तो उसको हम उत्कृष्ट कहेंगे। उसमें से कुछ कम का कहेंगे उसको अनुत्कृष्ट कहेंगे। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए, इन्हें मनुष्य त्रिक में ही चतुस्थानीय, त्रिस्थानीय, द्विस्थानीय, एक स्थानीय सब होगी। आदेश से नारकियों में मोहनीय की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा चतुस्थानीय है, अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा चतुस्थानीय, त्रिस्थानीय और द्विस्थानीय है। हाँ एक स्थानीय नहीं है,
देश का थी है।
हाँ इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यंच, मनुष्य पर्याप्त, सामान्य देव और भवनवासियों से लेकर सहस्रार कल्प तक के देवों में जानना चाहिए। अनंत कल्प से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में मोनी कर्म की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण द्विस्थानीय है। उदीर्ण हुआ है, उदीर्ण इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए, यानी अनंत कल्प से लेकर ऊपर जो चल रही उदीर्णा वो द्विस्थानीय होगी। अब जघन्य का प्रकरण है, निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोहनीय कर्म की जघन्य अनुभाग उदीर्णा एक स्थानीय है, अजघन्य अनुभाग उदीर्णा एक स्थानीय है, द्विस्थानीय है, त्रिस्थानीय है और चतुस्थानीय है, ये उत्कृष्ट तक बाकी सब अजगण्य कहलाए। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए। आदेश से नारकियों में मोहिनी कर्म की जघन्य अनुभाग उदीर्णा द्विस्थानीय है, अजघन्य अनुभाग उदीर्णा द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय और चतुस्थानीय। इसी प्रकार सब नारकी, सब तिरियंश, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव और भवनवासियों से लेकर सहस्रार कल्प तक के देवों में जानना चाहिए। आनत कल्प से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में जघन्य और अजघन्य अनुभाग उदीर्णा द्विस्थानीय है। हमने उत्कृष्ट के प्रकरण में भी देखा था वो द्विस्थानीय और यहाँ पर भी द्विस्थानीय। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। ये पहला स्थान वाला यानी अनुयोग हो गया। अब अनुयोग नंबर दो, सर्व और उद्नव सर्व यानी दो और तीन हो जाएंगे ना। ये उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट उसमें होता है कि नहीं होता है? तेईस में उसको लेना कि अलग से लेना? देखो पहले पढ़ेंगे इसको। सर्व उदीर्णा और नौ सर्व अनुभाग उदीर्णा की अपेक्षा उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा, अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा और अजघन्य अनुभाग उदीर्णा का भंग अनुभाग विभक्ति के समान है। उसमें से हमने देखा था ना अनुभाग विभक्ति में, विभक्ति का अर्थ वहाँ अलग अलग वेरिएशंस कितने थी उसकी बात हमने की। ये सर्व और नो सर्व हो गया, ये नंबर दो और तीन। अब उसके नीचे सादि अनादि ध्रुव और अध्रुव अनुभाग उदीर्णा की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट और जघन्य अनुभाग उदीर्णा क्या सादि है, अनादि है, ध्रुव है या अध्रुव है? तो कहते सादि और अध्रुव है, यानी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट अनादि से नहीं हो सकती, कभी उत्कृष्ट कभी अनुत्कृष्ट है। और जघन्य जब जाके मनुष्यों में होगी तब जाके होगी जघन्य, तो कहेंगे वो सादि और अध्रुव है। और जघन्य अनुभाग उदीर्णा जब तक जघन्य नहीं वो सारी अजघन्य कहलाएगी, भले वो उत्कृष्ट हो या अनुत्कृष्ट हो कुछ भी हो। तो अजघन्य अनुभाग उदीर्णा क्या सादि है, अनादि है, ध्रुव है या अध्रुव है? ये इसको हमने चार पांच छह सात नाम दिया है, नंबर दिया था ना। तो कहते सादि है अजघन्य अनुभाग उदीर्णा, सादि भी है अनादि भी है। हाँ ध्रुव भी है अध्रुव भी है। अजघन्य सादि कब कहेंगे?
उत्कृष्ट हो जाएगी, अजघन्य हो जाएगी नहीं, जघन्य होके तो किसी होगी नहीं, तो
उत्तम श्रेणी में उतरते समय होगी ना
वो जघन्य कही जाएगी।
अजघन्य की बात है, जघन्य तो सादि ही है, अजघन्य की बात पूछी है ना उन्होंने, तो उसमें सादी भी है अनादि भी है। अनादि से तो अजघन्य थी, जघन्य हुई या फिर उपशम श्रेणी में अनुभाग उदीर्णा ही रुक गई और फिर हो गई। आदेश से सब गतियों में उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य अनुभाग उदीर्णा क्या सादी है, अनादि है, ध्रुव या अध्रुव है? तो कहते सादी और अध्रुव है, वो अ बाद में इधर लगाना ध्रुव की तरफ, यानी गतियां ही सादी है अध्रुव है, इसलिए गति की अपेक्षा सभी में वो अध्रुव का सादी का।
ये जघन्य लिया है वो भी गति की अपेक्षा होगा ना?
हाँ उस गति में जघन्य होगा ना,
गति में जघन्य होगा
उसके लिए जघन्य। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। अब इसी का विशेषार्थ बताएंगे। उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म वाला जो जीव उत्कृष्ट संकलेश परिणाम से मोहनी की अनुभाग उदीर्णा कर रहा है, उसके उस समय मोहनी की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा होती है
या उत्कृष्ट संकलेश परिणाम में भी उदीर्णा होगी?
उदीर्णा तो हर समय चलेगी ना उसकी, उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म वाला जो जीव
अनुभाग कम होगा।
हाँ, क्योंकि हमेशा ही अनुभाग जो
बढ़ोतरी कटौती होगी, पर उत्कृष्ट संकलेश के साथ भी अनुभाग का कम होना होता है।
होगा होगा। तो उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म वाला जीव उत्कृष्ट संकलेश परिणाम से कुछ परमाणु ऊपर भी चले जाएंगे, कुछ कम नीचे भी आएगी ना, ये तो चलता रहता है उसमें।
ये तो अनुभाग की बात है।
बिल्कुल, हाँ ऊपर नीचे ने अभी यहाँ अनुभव की रचना समझना हमेशा।
ये जो आपने वर्टिकल बताया
वो हॉरिजॉन्टल हो, वो कहीं पर भी हो सकते हैं, प्रत्येक निषेक में हो गई है, हर एक निषेक में हो गई है। बिल्कुल, इन्हें सत्ता वाला ही लेना है यहाँ पर।
सत्ता
वही, अब जब उदय में आएंगे तब उसको उदीर्णा करेंगे, यानी वो उदय रूप होकर अगर उसका अनुभव घटता है और उदय रूप होता है तो उसको उदीर्णा कहें, और मात्र घटता है तो उसको अपकर्षण कहें। उदयावली ने उदय का समय लेना पड़ेगा।
मान लो ना सौ
वहाँ घटा तो उसको उदीर्णा
नहीं कहेंगे, ये उदय की अपेक्षा है।
यहाँ घटकर उदय में आने की बात है, दूसरे निषेक में से पहले निषेक में घटकर उदय में आया ऐसा कहेंगे। अनंत गुणा घटकर उदय में आया, अभी वो परमाणु किस रूप से था और किस रूप से उदय में आया।
नहीं, पर यहाँ पे जो बात है ये एक ही निषेक की बात है कि उदयावली की बात है? यहाँ पे तो एक ही निषेक की बात है, जो उदय में,
जो उदय में है वो किस रूप आया, वो परमाणु पहले किस पर्दक में था, अब किस रूप से उदय आ रहा है, उसकी बात है।
तो वहाँ पे हमने जो स्थिति की अपेक्षा देखी थी कि उदय एक आवली प्रमाण जो दिशा
है, यहाँ स्थिति की बात नहीं लेनी,
नहीं लेनी ना।
अब एट अ टाइम स्थिति की भी उदीर्णा चल रही।
हाँ।
हो सकता है कि वो परमाणु जो है
उसमें भी
वो ऊपर की स्थिति में था, अब नीचे आया है, उसी वक्त उसका अनुभाग भी घटकर उदय में आया है, तो उसको स्थिति की भी उदीर्णा कहेंगे, अनुभाग की भी कहेंगे, परंतु उसको कंसीडर करना है सेपरेटली, अभी दोनों का जमलिंग नहीं करना।
हाँ, एक ही निषेक की बात चलेगी अभी।
अभी तो उदय रूप निषेक में वो किस रूप से उदय में आ रहा है, पहले किस रूप से था, वो दूसरे निषेक में था या उदयावली के ऊपर का था, अभी वर्तमान में उदय रूप हो रहा है, वो किस फॉर्म में था और किस फॉर्म में उदय में आ रहा है, उसकी बात है। ये विशेषार्थ पढ़ेंगे ना, उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म वाला जो जीव उत्कृष्ट संकलेश परिणाम से मोहनी की अनुभाग उदीर्णा कर रहा है, उसके उस समय मोहनी की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा होती है, यथा यह कादाचित कहे यानी कभी होता है, इसलिए इसे तथा इस पूर्वक होने वाली यानी कभी उसने उत्कृष्ट की थी और उसके बाद अनुत्कृष्ट हुई थी, तो इस पूर्वक होने वाली अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा को ओग से सादी और अध्रुव का शपक श्रेणी में सकशाय जीव के, ये सकशाय जीव यानी कौन सा जीव लक्ष्मी? उसको कुछ नाम बाम दे दो ना। सूक्ष्म संप्रदाय, वही दसवा ही कहा उन्होंने, बराबर कहा। तो क्षपक श्रेणी में सकशाय जीव के एक समय अधिक एक आवली काल शेष रहने पर मोहनी की जघन्य अनुभाग उदीर्णा होती है, इसलिए ओग से इसे भी सादी और अध्रुव कहा है, यह भी एक समय और एक आवली काल शेष बताया।
ये इसको साधी क्यों कहा? क्योंकि जो सपक श्रेणी में जो जीव जाता है, सपक श्रेणी में जो जीव एक ही बार जाएगा,
तो जगन में तो शादी है ना, अनादि का था ही नहीं, जगन्य के लिए शादी का है ना, अजगन्य को शादी नहीं कह रहे यहाँ पर, अजगन्य तो अनादि से,
अनादि से।
अब ये जगन्य पहली बार हुआ है तो उसको क्या कहेंगे?
शादी,
शादी कहेंगे इसको, इसलिए इसे भी शादी और अध्रुव कहा। किंतु इसके पूर्व एक तो अनादिकाल से अजगन्य अनुभव उदीर्णा पाई जाती है, और दूसरे उपशम श्रेणी से गिरने वाले जीव के वह शादी होती है, बाकी सबके लिए अनादि की है। साथ ही अभव्यों के ध्रुव और भव्यों के वह अध्रुव होती है, इसलिए ओग से मुनि की अजगन्य अनुभव उदीर्णा शादी अनादि ध्रुव और अध्रुव चारों प्रकार की कही है। अध्रुव का वो अलग से आया, शेष कथन सुगम है। अब ये तो केवल हमने उसके नाम देखे, अभी वो किसके होते कहाँ होते उसकी बात चलेगी। अब स्वामित्व अनियोग द्वार दो प्रकार का है। इसको लेना, वो उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट को नंबर देना था कि कैसे?
सर्वावधि देना पड़ेगा ना,
सर्व नौ सर्व को दिया हमने,
पीछे शादी अनादि ध्रुव अध्रुव को दिया,
शादी अनादि ध्रुव अध्रुव, उसको उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जगन्य अजगन्य को नंबर नहीं दिए थे ना। अभी स्वामित्व अनुयोग द्वार देखेंगे हम, अपने यहाँ आठ नंबर आया ना ये। तो स्वामित्व अनुयोग द्वार दो प्रकार का है, जगन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है, निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोहनी की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण किसके होती है? जो अन्यतर उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म वाला जीव उत्कृष्ट संकलेश से युक्त है, उसके मुनि की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा होती है। इसी प्रकार चारों गतियों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है। पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में मुनि कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा किसके होती है? जो अन्यतर मनुष्य या मनुष्यनी या पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिक जीव उत्कृष्ट अनुभाग बांधकर अपर्याप्तकों में उत्पन्न हो, तत्प्रायोगिक संकलेश परिणाम से युक्त है, उसके मोनी कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा होती है, यानी उसके योग्य, क्योंकि वो अनुभाग ऊपर से यानी पहले भव से लेके आया है, अब यहाँ आने पर इसके योग्य उत्कृष्ट संकलेश हुआ है, उसकी बात है। आनत कल्प से लेकर उपरिम ग्रेविक तक योनि कहने योनि वाला यानी तिर्यंच जीव, योनि मति वाला नहीं लेना, सामान्य पंचेंद्रिय तिर्यंच लेना, तिर्यंच योनि वाला, योनि क्या नहीं योनि वाला,
समूर्छन नहीं ले सकते,
क्यों नहीं ले सकते?
पर्याप्त
समूर्छन भी मरकर यहाँ आ सकता है ना,
योनिक का मीन्स व्हाट?
योनिक का अर्थ योनि मति नहीं, तिर्यंच योनि वाला है ना, तिर्यंच जीव।
अच्छा, योनि
मनुष्यों में तो अलग से मनुष्य नहीं बताई, परंतु यहाँ पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि वाला जीव, तिर्यंच योनि ऐसा शब्द लेना, वो ये योनिमति वाला योनि नहीं,
नहीं।
यानी पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त में कौन से जीव उत्पन्न होते हैं? देव और नार की तो नहीं आ सकते, तो कौन आएंगे? मनुष्य और तिर्यंच आएंगे, मनुष्य और तिर्यंच, तो मनुष्य अपर्याप्त भी इसमें आ सकते हैं, तिर्यंच में तिर्यंच अपर्याप्त भी मरकर तिर्यंच अपर्याप्त में आ सकते हैं, उसको नहीं लेना है, क्योंकि उत्कृष्ट पहले उत्कृष्ट अनुभाग बांध कर यहाँ आया हुआ है जीव,
सभी पंचेंद्रिय तिर्यंच ले सकते हैं,
पंचेंद्रिय तिर्यंच सभी और मनुष्य
मनुष्य
मनुष्य मनुष्य नहीं सब।
मेरे
तो अन्यतर मनुष्य मनुष्य ही, हाँ उसमें भी वो पर्याप्त तत्प्रायोग्य संकलेश यानी जो उत्कृष्ट अनुभाग से आया हुआ जीव लेना है। योनिक बराबर है, जैसे हम निमित्त तक लेते हैं वैसे योनिक है ये। क शब्द लगाने की पद्धति है ना, तो जो अन्यतर मनुष्य मनुष्य ने पंच इंद्रिय योनिक जीव उत्कृष्ट अनुभाग बांध कर, ये महत्व की बात है। उत्कृष्ट अनुभाग कौन बांधेगा, मनुष्य तीर्यंच जो है अपर्याप्तकों में उत्पन्न हो तत्प्रायोगिक संकलेश परिणामों से युक्त है, उसके मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा होती है। देखो जिसके पास वो अधिक से अधिक स्पर्धक है और सब में से
अब
थोड़े थोड़े परमाणु नीचे के उसमें आते हैं उदय रूप होते हैं तो उसको उत्कृष्ट उदीर्णा कहेंगे। अनंत कल्प से लेकर उपरिम गिरवेक तक के देवों में मोहनी कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा किसके होती है, तो तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म वाला जो अन्यतर जीव अपने अपने योग्य देवों में उत्पन्न होकर तत्प्रायोग्य संकलेश परिणाम से युक्त है, उसके मोहनी कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा होती है। आनंद से लेकर ग्रेवेक तक,
ये उत्पन्न होने के पहले समय में लेना है,
हाँ वहीं पर लेना क्योंकि वो पूर्व
तो
से लेके आया है, मिथ्या दृष्टि लेना। अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में मोहनी कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा किसके होती है, तत्प्रायोगिक उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म वाला जो अन्यतर कौन सा लिया, वेदक समय दृष्टि जीव, क्योंकि द्वितीय उपशम वाले की विशुद्धि ज्यादा है तो उसका अनुभाग ऑलरेडी घट के आया है, वो नहीं चलेगा। अपने अपने योग्य देवों में उत्पन्न हुआ तत्प्रायोगिक संकलेश परिणाम वाले उस जीव के मोहनी कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा होती है, इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। जघन्य का प्रकरण है यानी जघन्य अनुभाग उदीर्णा, कम से कम स्पर्धकों में से उदीर्णा हो रही है, ऐसा इसका अर्थ लेना।
यह तेरह अनुयोग समाप्त हो गए,
हाँ
तेरह अनुयोग बताए थे ना,
23 है,
हाँ सॉरी
अभी तो स्वामित्व होगा, एक जीव की अपेक्षा काल होगा, अंतर होगा, फिर नाना जीवों को भंग होगा, भागा भाग होगा, परिमाण होंगे, बहुत सारे है ना, उपक्षेत्र स्पर्शन काल अंतर अनेक जीवों की अपेक्षा। तो यहाँ जघन्य का प्रकरण है, निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोहनीय कर्म की जघन्य अनुभाग उदीर्णा किसके होती है, जिस सकशाय जीव के यानी सूक्ष्म सांप्राय हो शपक श्रेणी में एक समय अधिक एक आवली काल शेष है, उस अन्यतर जीव के मोहनीय कर्म की जघन्य अनुभाग उदीर्णा होती है।
तो एक अवली काल में प्रविष्ट हुए जीव के उदीर्णा ही रुक जाएगी, इससे पता है
मेरे ख्याल से वहाँ अनुसमयापवर्तन होता है, अभी जो उदीर्णा वगैरह होती थी प्रत्येक समय में अनुभाग का अनंत गुणाहीन हो जाना,
तो वो भी उदीर्णा ही कही जाएगी,
उसको क्या नाम दिया मालूम नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए, आदेश से नारकियों में मोहनीय कर्म की जघन्य अनुभाग उदीर्णा किसके होती है, अन्यतर सम्यक दृष्टि सर्व विशुद्ध नारकी के होती है। सम्यक दृष्टि सर्व विशुद्ध मेरे ख्याल से अनंत अनुबंध
विचेना
वाला होगा है ना, या
शायद
भी ले सकते हैं ना,
शाही के लेना पड़ेगा ना,
शाही ले सकते क्योंकि ये मूल प्रकृति की बात चल रही है ना। इसी प्रकार सब नारके और सब देवों में जानना चाहिए। सर्व विशुद्ध यानी जिसकी विशुद्धि मैक्सिमम है, अब वो किस पोजीशन पर होगी?
अभी से अरे सपना करेगा, पीछे तो अनुभाग में कोई कटौती बढ़ोती नहीं होगी ना, सपना क्या चपी सपना कर दी अंतिम समय में,
क्यों नहीं कटौती होगी बढ़ोती होगी? मूल प्रकृति की अपेक्षा बात चल रही है ना, एक एक प्रकृति की बात नहीं यहाँ पर। अभी वो किस पोजीशन पर होगी उन्होंने तो देखा, यहाँ देखा नहीं, यहाँ कुछ लिखा है कि नहीं? तो कृतकृत्य वेदक में ही लेना के कहाँ लेना है? नहीं वहीं पर होगी ना, जगन्य अनुभाग उदीर्णा वही उसके लिए, नारकी के लिए वही होगा ना। तो कृतकृत्य वेदक के अंतिम समय में लेना पड़ेगा, परंतु फिर तभी अन्य कर्मों की
वहाँ पे तो कारण परिणाम तो खत्म हो गए।
नहीं पर अन्य कर्मों की है ना वहाँ पर,
मोनी की बात है,
हाँ कषाय उनकी रह जाएगी। इसी प्रकार सब नारके और सब देवों में जानना चाहिए। तिरियंचों में मोनी कर्म की जघन्य अनुभाग उदीर्णा किसके होती है? अन्यतर संयता संयत सर्व विशुद्ध तिरियंच के होती है। यहाँ एक्साइक लेंगे क्या?
एक्साइक नहीं लिया ना, यहाँ पे संयता संयत लिया।
पांचवे गुण स्थान में एक्साइक कैसे लेंगे?
नहीं होगा।
इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिरियंच त्रिक में जानना चाहिए। पंचेन्द्रिय तिरियंच अपर्याप्त और मनुष्य पर्याप्तकों में मोहिनी कर्म की जघन्य अनुभाग उदीर्णा किसके होती है? अन्यतर तत्प्रायोग विशुद्ध उक्त जीवों के होती है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। अब तत्प्रायोग विशुद्ध कब होता है वो तो बात यहाँ लिखी नहीं उन्होंने, अभी तो शुरू है ना, आगे आएगी बात। या उत्तर प्रकृतियों में और उसकी बात क्लियर हो जाएगी ज्यादा। अब काल दो प्रकार का है, कितना नंबर डालना? 24 हो गया क्या? इसको 9 नंबर देके 23 उल्टे क्रम से नंबर देंगे हम। देखो पेज नंबर 27 पर अल्प बहुत्व है, वो 23 होगा। भावानुगम 22 होगा, उसके पहले 26 पेज पर अंतरानुगम है वो 21 होगा, उसके पहले काल होना चाहिए। हाँ
स्पर्शन
नहीं नहीं काल है ना 25 पेज पर, कितना है वो 20 है ना, 20 है। उसके पहले स्पर्शन 19, क्षेत्रानुगम 18, परिमाण 17, उसके पहले भागा भाग होगा, भागा भाग 16, हाँ भंग विषय आना चाहिए अभी, ये 15 उसी पेज पर था,
भंग विषय को 15 ना,
हाँ भंग विषय 15 नंबर है। उसके आगे अंतरानुगम एक जीव की अपेक्षा, मैं किस पर चली गई थी? ओ भुजगार की, सॉरी हाँ भुजगार में घुस गए, मुझे लगा है ऊपर मैं देख रही थी भुजगार, हाँ भुजगार उसमें तो इतने नहीं होते हैं ना, वो कुछ 13 वगैरह 13 होते हैं उसमें, हमने गलत नंबरिंग दे दिया गलत। हाँ
हाँ
अभी हमको हाँ ये भुजगार की बात आ गई, नहीं नहीं अल्पभूत से लेना था ना हमको, नहीं यहाँ का अल्पभूत कहाँ है, अच्छा 20 पेज पर, नहीं नहीं भुजगार के आदि भुजगार के पहले इसी का है, 20 पेज पर अल्पभूत 23 है,
भावानुगम 22
है, 19 पेज पर उसके पहले अंतर है ना, 19 पेज पर 21 है, उसके पहले काल होना चाहिए नाना जी उनके अपेक्षा, 20 आया हाँ, आप पेज नंबर 18 कह रहे हैं, काल के पहले स्पर्शन होगा ना 15 पेज, ओ नंबर कितना 19 बराबर है ना 19
हाँ,
उसके पहले क्षेत्र
18
परिमाण
17
हाँ भागा भाग
16
भंग विजय 15 एक जीव की अपेक्षा अंतर 14 नंबर लिया ना, काल को 13 वही उत्कृष्ट, मैं वही बोल रही थी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य को नंबर देने हैं ये बात, मैं इसीलिए मैंने इसको गिनाया आगे तक, तो इसको अगर 13 देते हैं तो स्वामित्व अनुगम को 12 नंबर आएगा, और यहाँ सर्व नो सर्व में है ना, 2 और 3 दिए थे, 4, 5, 6, 7 देना, उसी में उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट की बात आई थी, उत्कृष्ट है अनुत्कृष्ट है अजघन्य है और जघन्य है, अनुभाग भक्ति के समान है इतना ही कह दिया है, फिर भी वो वहीं पर समझना चाहिए,
उसके नीचे की लाइन में शादी अनादि ध्रुव के नीचे के लाइन में 8, 9, 10, 11 उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य, ये 6 नंबर के पृष्ठ पे जो हमने 4, 5, 6, 7 दिए थे ना
हाँ।
तो उसके नीचे की लाइन में उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य, तो उसको भी नंबर देना पड़ेगा,
वो कहीं पर अच्छा 4, 5, 6, 7 के बाद शादी अनादि के बाद वही कहीं पर भी दे दो ना,
वो तो ऊपर भी ले सकते हैं ना शादी अनादि के लिए
8, 9, 10, 11 हाँ नीचे दे दो, ये 12 नंबर स्वामित्व आएगा, यानी ये सर्व नो सर्व हो गए, शादी अनादि ध्रुव अध्रुव हो गए, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य हो गए, ये 4 अनुयोग वहां लेने चाहिए थे, अभी तो हम आगे आए हैं काल तक, ये 13 नंबर हम काल को दे देंगे 8 नंबर पेज पर, हाँ पढ़ेंगे काल 2 प्रकार का है जघन्य और उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का प्रकरण है, निर्देश 2 प्रकार का है ओघ और आदेश, ओघ से मोनिय कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग उदीरक का कितना काल है, जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीरक का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट अनंत काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन के बराबर है। इसी प्रकार तीर्यंचों में जानना चाहिए, क्योंकि कंडीशन क्या थी, उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता चाहिए और उत्कृष्ट संकलेश परिणाम चाहिए। आपने जो अध्याय और संकलेश वो बराबर नहीं है, क्यों नहीं है? किसी उत्कृष्ट संकलेश परिणाम में लगातार रहने का काल कितना होगा?
दो समय। कोई अपेक्षा से मैंने बताया था
ये मध्य रचना होती है ना,
हाँ।
उस अपेक्षा से वो सर्वोत्कृष्ट परिणाम में लगातार रहने
दो समय है।
और नीचे हम बीच में बढ़ते बढ़ते 8 तक आए और सबसे नीचे 4 तक आए थे, यानी सबसे ऊपर 2 समय, फिर बढ़ते रहते 3, 4, 5, 6, 7
8
समय थे,
और
फिर
7, 6
नीचे में नीचे के 4 तक आए थे। सर्वोत्कृष्ट परिणाम संकलिष्ट परिणाम तो 2 समय तक रहेगा। तो जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल 2 समय, अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीरक का ये तो पढ़ा हमने, लगातार 2 समय तक। वही तो उत्कृष्ट तब तक ही होगा ना, उसकी बात नहीं है, उस परिणाम में रहने का सर्वोत्कृष्ट काल उस उसके पास मैक्सिमम सत्ता में है, बाद में वो तो अनुत्कृष्ट हो जाएगी उसकी।
क्या उत्कृष्ट की उदीर्ण हो गई एक बार तो वापस उसकी उत्कृष्ट की होगी,
फिर से दोबारा उत्कृष्ट संकलेश करेगा तो होगा अभी ये पूरी आधी पुस्तक होनी है, सब आप पहले ही कई दिन आप कैसे आप समझेंगे, आप ही हमें समझाना, आप पढ़ के आना वो पहले क्या आपको ढूंढने को बोला था ना
आनंद करते देखकर
नहीं पढ़ी
नहीं
अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीरक का जघन्य काल ये पढ़ा हमने, हाँ, असंख्यात पुद्गल पर विशेषार्थ, उत्कृष्ट संकलेश का जघन्य काल एक समय है, लिखा है ना, उत्कृष्ट संकलेश परिणाम रहने का काल एक समय है या उत्कृष्ट काल 2 समय है, इसलिए यहाँ मोनि कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 2 समय कहा।
अच्छा यहाँ पे 2 समय बताया, वो तो संकलेश और अध्यास ऐसे ही होगा, 2 समय की अपेक्षा बात की उन्होंने,
लगातार समय 2 है, उत्कृष्ट परिणाम में लगातार रहने के काल है 2 समय, तो 2 समय तक उसके, क्योंकि उसके तो उस काल में बता रहे,
हाँ, तो काल की अपेक्षा 2 समय तक तो अध्यास और संकलेश ऐसे होगा।
अभी उसकी बात मत करो, संकलेश से अध्यक्ष ऐसे, वहाँ तो स्थिति की बात की थी हम, यहाँ अनुभाग की बात लेना है।
अच्छा तो यहाँ पे पुरुष में 2 समय ही दे सकते,
स्थिति बंध के परिणाम अलग होते हैं, अनुभाग बंध के परिणाम अलग है ना, परिणाम अलग होते हैं ना, परिणाम एक समय में एक ही है, उसमें यहाँ अनुभाग की अपेक्षा लगा, हाँ। ये वहाँ पे लगातार योग में हमने देखा था,
योग
उसी योग में रहने का लगातार का काल, अनुत्कृष्ट अनुभाग
योग और अनुभाग को कुछ, क्योंकि योग की अपेक्षा तो परमाणु की संख्या,
योग अलग बात है, अनुभाग के अध्यवसाय स्थान होंगे, अभी देखेंगे पूरा विशेषार्थ पढ़ेंगे फिर देखेंगे। अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा का जघन्य काल एक समय इसलिए है क्योंकि जो जो उत्कृष्ट अनुभाग बंध के योग्य उत्कृष्ट संकलेश परिणाम से परिणम कर उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करके परिणामवश एक समय तक अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा करता है, उसके मोहनी कर्म के अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा का जघन्य काल एक समय पाया जाता है। यद्यपि उत्कृष्ट संकलेश से प्रतिभग्न हुआ जीव अंतर्मूर्त हुए बिना पुनः उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त नहीं होता ऐसा नियम है, परंतु अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थानों में इस प्रकार का नियम नहीं है। इसलिए यहाँ अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा का जघन्य काल एक समय बन जाता है। इसका उत्कृष्ट काल अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल हो, अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन के बराबर अनंत काल है, यह स्पष्ट ही है। क्योंकि संगी पंचेंद्रियों के योग्य उत्कृष्ट संकलेश के बिना इतने काल तक एकेंद्रियों में परिभ्रमण देखा जाता है। तिर्यंचों में यह ओग प्ररूपणा अविकल घटित हो जाती है, क्योंकि असंख्यात पुद्गल परिवर्तन तिर्यंचों में ही होगी, इसलिए उनमें ओग के समान जानने की सूचना की। आगे आदेश प्ररूपणा को भी उक्त नियमों को ध्यान में रखकर घटित कर लेना चाहिए। यानी आदेश की बात आगे आने वाली है, वहां भी ये नियम लागू होगी, तो किसी पर्याय में रहने का जो उत्कृष्ट काल है उसको ले लेंगे वहां पर। मात्र अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा के उत्कृष्ट काल को अपनी अपनी गति के, ये लिखा है, उत्कृष्ट काल को ध्यान में रखकर घटित कर लेना चाहिए। जैसे नरक में रहने का जो उत्कृष्ट काल है वह अनुत्कृष्ट रहा, उसमें उत्कृष्ट नहीं हुआ, इस तरह से यहाँ ये बात बताते हैं। कहाँ की बात बता रहे थे? पेज नंबर, हाँ यहाँ लिखते हैं उत्कृष्ट अनुभाग से तो नीचे आया है, ये संकलेश परिणाम से, यानी उसके उत्कृष्ट संकलेश परिणाम अभी नहीं रहे। अंतर्मूर्त के पहले दोबारा उत्कृष्ट संकलेश परिणाम नहीं हो सकते, परंतु अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थानों में ऐसा नियम नहीं है। अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट हो जाए एक समय में फिर उत्कृष्ट हो सकते हैं, ये बात बताना। कषाय अध्यवसाय स्थान अलग बात है, अनुभाग बंध अध्यवसाय यानी स्थितिबंध अध्यवसाय स्थान अलग बात है, अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान अलग बात है। अनुभाग का बंध
अनुभाग में हमने इसे देखा था ना, एक परिणाम के वक्त जो उत्कृष्ट में उत्कृष्ट अनुभाग बंधेगा वो सभी जगह समान होगा, तो उस वही अनुभाग वहाँ पे रहेगा।
उस वहाँ
अनुभाग की अपेक्षा जो उत्कृष्ट संकलेश के साथ उत्कृष्ट अनुभाग का जो बंध होगा वो सभी जगह सभी निषेक में हमने समान लिया था।
कभी सभी निषेकों में
अनुभाग तो जो एक समय में जो बनता है वो समान ही होता है ना सभी जगह,
जैसे स्थिति बनती है।
हाँ,
तो स्थिति में प्रत्येक परमाणु में अलग स्थिति बनती है कि नहीं बनती,
ऐसा अनुभाग में भी कटौती,
इसमें भी अनंत स्पर्धक बंध होते हैं, अनंत स्पर्धकों का बंध होता है प्रति समय, नहीं तो सभी परमाणु में समान अनुभाग मानना पड़ेगा।
स्पर्धक की अपेक्षा उत्कृष्ट
जो टॉप मोस्ट है उसको हम उत्कृष्ट कहेंगे, पर नीचे से ऊपर तक सभी बंधेगे कि नहीं बंधेगे? अन्य कोई विशेषता न होने से यह हम उसका अलग से निर्देश नहीं करें, यानी जो ओग के लिए इन्होंने स्पष्टीकरण विशेषार्थ में बताया है यही स्पष्टीकरण आदेश में भी लागू होगा। अब कहते आदेश से नारकियों में मोहनीय कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग उदीरक का जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीरक का जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल 33 सागर है। यानी बीच में सर्वोत्कृष्ट संकलेश परिणाम हुआ नहीं उसके, तो अनुत्कृष्ट ही रहे। इसी प्रकार सब नारकियों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी स्थिति कहनी, यानी प्रत्येक नरक की अपनी स्थिति कहनी वहां पर अनुत्कृष्ट के उत्कृष्ट काल के लिए। पंचेंद्रिय तिर्यंच अतिरिक्त और मनुष्य त्रिक में मोहनीय कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग उदीरक का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल दो समय। अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीरक का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में मोहनीय के उत्कृष्ट अनुभाग उदीरक का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। यहाँ उनके योग्य संकलेश परिणाम हो गए अधिक। अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीरक का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, इन्हें लगातार उस पर्याय में रहने का काल लेना। हाँ, दो समय तक एक समय अनुत्कृष्ट का एक समय घटित होगा, उत्कृष्ट के पहले या लास्ट में।
नहीं, योग में भी उससे उन्होंने लिया एक समय।
नहीं, पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्त, ये तो अनुत्कृष्ट का कहीं भी एक समय घटित होता है ना, उसके लिए मरण की भी अपेक्षा नहीं है, कहीं से आने की भी नहीं।
योग में भी लिया है।
अभी हमने देखा था ना अनुभाग वंदर व्यवसाय में, इसका संगी पंचेंद्रियों में से आया हुआ जीव वो तो सत्ता का अनुभव है और इसके अपने योग्य संकलेश परिणाम हो गए ना। वो अंतर होता है कि नहीं होता वो देख के फिर, क्योंकि दो समय लगातार तो ले लिए इन्होंने।
ऊपर बताया था ना कि आवली के पश्चात जो उदय में आएगा उसका उत्कृष्ट,
यदि उसका अंतर है अगर कहेंगे तो उसके बाद में भी होता है निश्चित होगा, देख लो अभी। पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्त 11 नंबर, उसका भी उत्कृष्ट का भी अंतर बताए, जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर मूर्त है, यानी वो कहीं पर भी हो सकता है। पंचेंद्रिय में से उत्कृष्ट सत्ता लेके आया है और इसके अपने योग्य उत्कृष्ट परिणाम हो गए संकलेश के, तब की बात है। मैंने शुरू में और लास्ट में दोनों जगह घटित किया।
जो पर्याप्त मनुष्य बन करके आया है उसका जो पहले समय में अपर्याप्त दशा में हुआ वही अनुभाग वापस अंतर के समय में भी हो सकता है।
हाँ, इसके फिर अपने संकलेश ज्यादा हो गए ना,
उसके संकलेश के परिणाम
में सभी अनुभाग, जैसे हम स्थिति सभी घटती है क्या, थोड़े परमाणु की घटती है ना।
हाँ।
स्थिति तो एक समय में घट रही है, अनुभाग में तो थोड़े होगा कि चार समय पास हो गए तो अनुभाग घट गया, ऐसा थोड़े होगा। स्पर्धक सब पड़े रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उत्कृष्ट स्पर्धक में से कुछ परमाणुओं का घटा तो बाकी अपने अपने जगह पर है ना, उसकी बात है। यहाँ उसका कारण क्या है, सर्वोत्कृष्ट में से
उत्कृष्ट में से उदीर्ण हो गई पर उत्कृष्ट अनुभाग
सत्ता में है ना, वहाँ पर पड़ा है तो इसके अपने संकलेश परिणाम से लेना उसको। ये पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्त,
मैंने पूछा था ना कि जो एक अनुभाग जो मैक्सिमम बंधेगा वो सभी स्पर्धक में होगे तब सभी निषेक में भी होगे, वहाँ पे हमने क्या देखा था कि अनुभाग की अपेक्षा उत्कृष्ट में उत्कृष्ट बंधेगा वो सभी स्पर्धक अरे सभी निषेक में होगे, तो ये एक अंतर घटित होगा ना, क्योंकि लास्ट समय में
परिणामों के कारण वो कितने स्पर्धकों में से उसका
उत्कृष्ट अनुभाग वाला जो स्पर्धक है उसमें से उदीर्ण होगी तभी हम कहेंगे उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण होगा।
अकेले उत्कृष्ट में से नहीं, सभी में से होगी ना, उत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण किसको कहते हैं, एक स्थिति में
मैक्सिमम स्थिति में से जब उदीर्ण होगी अंतर्भूत कम करके, अरे दो अवली प्रमाण जो निश्चय कम हो जाएगा बाकी में से जब भी उदीर्ण होगी तभी उसको
अकेले ऊपर से होती है कि उदय अवली के ऊपर के सभी से होती है,
बंदावली के बाद एक उदय अवली को छोड़ के दो अवली छोड़कर ऊपर से सभी में से
कब होती, नहीं पूछा कितने स्थितियों में से होती पूछा।
हाँ, तो वो तो उत्कृष्ट तो
एक निषेक में से उत्कृष्ट कहेंगे ऊपर के, उदयावली के ऊपर के निषेक से लेकर ऊपर तक के सभी में
सभी
से उसको उत्कृष्ट का। तो यहाँ पर भी कितने में नहीं होता है और कितने में होता है उसकी भी बात होगी ना। अभी मैंने कहा ना इसके तो थोड़ी सी आगे पढ़ेंगे जितने तो क्लैरिटी और बढ़ती चली जाएगी। मैंने भी नहीं पढ़ा है ये, तो मैंने भी विषय नहीं पढ़ा है। तो हमने अभी पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त में देखा और ये बात नक्की हुई अंतर के द्वारा, ये शुरू में भी हो सकता है लास्ट में भी हो सकता है। तो उसका भी उत्कृष्ट काल दो समय बताया और अनुत्कृष्ट का तो पता है ना, जगन्य काल एक समय जैसे अन्यत्र घटित होता है और यहाँ इनके जो रहने का काल है अपनी स्थिति अंतर्मूल प्रमाण। देवों में मोहनी के उत्कृष्ट अनुभाग उदीरक का जगन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल दो समय, सभी गतियों में घटित किया दो समय। अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीरक का जगन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 33 सागर है। इसी प्रकार सब देवों में जानना चाहिए इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए। इसी प्रकार अनाहार कर डालो अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। अब यहीं रुकेंगे हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे